राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दान, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज
Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama.
राम राम हरे हरे
Hare Hare, Hare Rama Hare Rama.
राम हरे हरे
Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित द पाथ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग, जिसका शीर्षक रखा गया है, इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज बहुत पावन और पवित्र तिथि है। भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली, भगवान को प्रसन्न करने वाली एकादशी तिथि है और आज के इस पवित्र दिन में हम सबको भगवत कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन का बहुत बड़ा लाभ है यह। कथा तो प्रायः सुनते रहते हैं, सांसारिक कथा जिसे कहते हैं, परंतु भगवत कथा इस कलयुग में बहुत कम सुनने मिलती है। ऐसी भक्ति वेदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं भगवत और भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। परम पवित्र कथा है भागवत के छठे स्कंध में, जैसे कि हम लोगों ने कल श्रवण किया। समय कम होने के कारण कल संक्षिप्त में वर्णन हुआ, इसलिए थोड़ा पीछे जाकर प्रकाश डालेंगे। कल हमने श्रवण किया ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति ने पांच जनी के साथ विवाह करके 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और उन 10,000 पुत्रों का नाम रखा गया हरियश्व। मित्रों, जब कोई पिता अपने पुत्र का नाम रखता है, नामकरण करता है, तो उस नाम का कुछ गुण होता है, अर्थ होता है। दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों का नाम हरियश्व रखा और शास्त्र भी उसे हरियश्व कहते हैं। हरियश्व का अर्थ होता है हरिम विद्या तत्कार्य हर्तानम अश्नुवंती प्राप्नुवंती इति हरियश्व। वंशीधर जी कहते हैं हरियश्व में दो शब्द है, हरि और अश्व। हरि का अर्थ होता है हरिम विद्या, हरि की विद्या अर्थात भगवान की विद्या जिसने प्राप्त की है। वंशीधर जी कहते हैं कि भगवान की विद्या कैसी होती है, कहते हैं तत्कार्य हर्तारम्। भगवान हरि की विद्या संसार के सभी दुखों को मुक्त करने वाली है। देखिए, इस हरियश्व नाम में बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। हरिम विद्या तत्कार्य हर्तारम्। हरि की विद्या कैसी है, तो कहते हैं सभी दुखों से मुक्त करने वाली। दो प्रकार की विद्या होती है, एक है हरि विद्या और एक है भौतिक सांसारिक विद्या। हम लोग भी संसार में विद्या प्राप्त करते हैं, परंतु वह विद्या भौतिक और सांसारिक होने के कारण उस विद्या से मात्र दुख मिलता है। हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी विद्या प्राप्त करते हैं, उस विद्या से केवल दुख और भोगों में फंसते हैं। परंतु हरि की विद्या यदि प्राप्त हो जाए तो कहते हैं हरतारम सभी दुखों को हर लेती है। तो जो लोग हरि की विद्या को प्राप्त किए हैं, अश्नुवंती का अर्थ होता है प्राप्नुवंती, जो लोग हरि की विद्या को प्राप्त किए हैं ऐसे लोगों को हरियश्व कहा जाता है। और वास्तव में दक्ष प्रजापति के यह पुत्र हरि की विद्या प्राप्त किए हुए। एक बार मैं मेरे गुरु महाराज से यह प्रश्न पूछा, हरियश्व का अर्थ क्या होता है? तो उन्होंने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हरि का अर्थ होता है भगवान और अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। कहा कि जिस घोड़े के ऊपर हरि सवार होते हैं उसे हरियश्व कहा जाता है। मैं तो सोच में पड़ गया, क्या भगवान ये हरि ये हरियश्व के ऊपर सवार होते होंगे? परंतु उन्होंने कहा कि अश्व का अर्थ होता है मन। हमारे वेदों में शास्त्रों में मन को हाथी के साथ तुलना किया गया है और कभी कभी घोड़े के साथ भी तुलना किया गया है। तो कहते हैं कि अश्व के ऊपर हरि सवार होते हैं, अर्थात जिसके मन के ऊपर हरि सवार है उसे हरियश्व कहा जाता है। हरियश्व का अर्थ है जिसके मन में एकमात्र हरि बसे हुए हैं और हरियश्व के मन में हरि को देने वाले उनके परम गुरु श्री नारद मुनि थे। मित्रों, जो गुरु होते हैं वे कृपा करके भगवान को अपने मन से अपने शिष्य के मन में ट्रांसफर करते हैं, दे देते हैं। ये गुरु का कार्य होता है। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र जिसका नाम हरियश्व था, हरि की विद्या प्राप्त किए हुए, अपने पिता की आज्ञा से तपस्या करने के लिए गए और तपस्या करके जब वे वापस लौट रहे थे, रास्ते में नारद मुनि मिले। कल हमने श्रवण किया, नारद मुनि ने कहा कहां जा रहे हो? हरियश्व ने कहा कि हम लोग हमारे घर पर जा रहे हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। तब नारद मुनि सोचते हैं, अहो निरुत्र मार्ग अधिकारिण प्रवृत्ति मार्गे चलती इति। नारद मुनि मन में शोक करते हैं, अरे आपको तो निवृत्ति मार्ग स्वीकार करना चाहिए, आप प्रवृत्ति मार्ग में जा रहे हो। यदि आपको स्वतंत्र होना है तो निवृत्ति मार्ग ग्रहण करो। हमारे शास्त्र में दो प्रकार का मार्ग बताया गया है, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है संसार को ग्रहण करके इस संसार में रहकर कर्म करना, भोग भोगना, उसमें प्रवृत्त रहना। और निवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है भगवान की भक्ति करके, धीरे धीरे करके इस संसार से, भौतिक आसक्ति से निवृत्त हो जाना और निवृत्त होकर भगवान को प्राप्त करना। अहो नारद मुनि विचार करते हैं कि इन लोगों को निवृत्ति मार्ग स्वीकार करना चाहिए, परंतु ये प्रवृत्ति मार्ग में जा रहे हैं। इसलिए नारद मुनि अपने श्री मुख से हरियश्व को बहुत सुंदर बात कहते हैं। उवाच चाथ हरियश्वा कथम स्त्रक्षस्य वै प्रजा। उवाच नारद मुनि ने कहा, क्या कहा? अथ अथ का अर्थ होता है हमारे वेद और शास्त्र में किसी भी प्रसंग किसी भी श्लोक और पाठ के प्रारंभ में अथ शब्द होता है। अथ इति प्रारंभ है, किसी भी कथा को वस्तु को प्रारंभ करने से पहले अथ शब्द का उपयोग होता है और किसी भी प्रसंग का अंत करते समय इति शब्द का इस्तेमाल होता है। अथ अर्थात स्टार्ट और इति अर्थात एंड। तो अथ शब्द सूचित कर रहा है कि अब कथा प्रारंभ होने जा रही है। कहते अथ हर्यश्वा बत, बहुत आश्चर्य की बात है कि आप लोग सृष्टि करना चाहते हो, विवाह करना चाहते हो, बच्चे उत्पन्न करना चाहते हो। वास्तव में आप बालिशा बतपाल का, आप लोग बालक बुद्धि हो अर्थात मूर्ख बुद्धि वाले हो। आप लोग अपनी अपने पिता की आज्ञा को मानकर आप ऐसे अपने आप को पालक मानते हो क्योंकि आप प्रजापति के पुत्र हो और अपने आप को पालक मानकर आप पालनकर्ता बनने के लिए निकले हो। आप क्या पालन करोगे? आप चाहते हो कि हम पालक बने, सृष्टि करें, पुत्र उत्पन्न करें और उसका पालन करें, परंतु इस संसार के बारे में ही आप नहीं जानते हो तो कैसे पालन करोगे? तब नारद मुनि हर्यश्व को कहते हैं कि आपको सृष्टि करनी है, सर्जन करना है, तो क्या सृष्टि के बारे में जानते हो? अदृष्टवांतम भुवो यूयम, इस सृष्टि के अंत को जानते हो? सृष्टि के बारे में भी कुछ जानते हो? नारद मुनि भी बहुत बुद्धिमान है। नारद मुनि कहते हैं सृष्टि के बारे में यदि नहीं जानते हो तो क्या सृष्टि करोगे? आप लोग सृष्टि के बारे में नहीं जानते हो तो सृष्टि नहीं कर सकते हो। और नारद मुनि ने मन ही मन में सोचा कि यदि सृष्टि के बारे में पूरा पूरा जान जाओगे तब भी सृष्टि नहीं कर पाओगे। तो क्या पृथ्वी के अंत को जानते हो? ऐसे नारद मुनि ने हर्यश्व को 10 प्रश्न पूछे और हर्यश्व नारद मुनि के इस प्रश्न को बहुत सुंदर तरीके से समझ गए। नारद मुनि ने जब पूछा कि आप सृष्टि के अंत को जानते हो तब हर्यश्व समझ गए, भूक्षेत्रम जीव संज्ञम यत अनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किम असत कर्म भीर भवे। 11वें श्लोक में कहते हैं कि जीव संज्ञा वाला, जीव का अर्थ होता है जो प्राणाय धारयति इति जीव, जो प्राण को धारण करे उसे जीव कहा जाता है। तो प्राण को धारण करने वाला यह शरीर है। हर्यश्व समझ गए कि नारद मुनि सृष्टि की, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, वास्तव में वह पृथ्वी और सृष्टि और कोई नहीं, यह शरीर ही एक क्षेत्र है, यह शरीर ही एक सृष्टि और पृथ्वी है और यह शरीर ही आत्मा के लिए अनादि बंधनम, बंधन का कारण है, दुख का कारण है। और यह भी समझ गए अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम, जब तक इस शरीर के अंत को नहीं जानेंगे तब तक इस शरीर के लिए कार्य करने से कोई फायदा नहीं है। हर्यश्व समझ गए कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। और कल बहुत सुंदर तरीके से हम यहां पर श्रवण किए, साबित किए, प्रमाणित किए कि किस प्रकार हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। वास्तव में सभी धर्मों ने और सभी धर्म ग्रंथों ने इस बात को स्वीकार किया है। हमारे वेदों में इसको आत्मा कहा गया है, कुरान में इसे रूह कहा गया है और बाइबल में इसे सोल कहते हैं। सभी धर्म के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जब कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाता है तो वे सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न तो कभी मृत्यु होता है। न जायते मृियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूयम अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, आत्मा का न तो कभी मृत्यु होता है। नैनम छिदंति शस्त्राणी, आत्मा को न तो शस्त्र के द्वारा भेदन किया जा सकता है, काटा जा सकता है। नैनम दहति पावका, आत्मा को न तो अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। न चैनम कले दंत्यापो न शोष्यति मारुत, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता है। इसका अर्थ है आत्मा को कभी कुछ होता ही नहीं है, ये जो भी होता है इस शरीर को होता है। जो भी दुख दर्द ये जो भी है शरीर को है, आत्मा कभी दुखी नहीं होता है। परंतु यह शरीर आत्मा इस शरीर को धारण किया हुआ है, इसलिए शरीर के द्वारा व्यक्ति दुखी रहता है। परंतु आत्मा सत चित आनंद है, परमात्मा का अंश है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा कभी परमात्मा बन जाता है, परंतु यह बिल्कुल गलत जवाब है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता है, आत्मा आत्मा होता है, परमात्मा परमात्मा होता है। कुछ लोग कहते हैं बहुत सारी आत्मा मिलकर एक परमात्मा बन जाएगी, यह भी कभी नहीं हो सकता है। परमात्मा विभू है, परमात्मा अनंत है, आत्मा अणु है। अणुर अणियाम, अणु से भी अणु है और परमात्मा विभू से भी विभू है। तो प्रश्न होता है आत्मा कितना बड़ा है। उपनिषद और वेदों में इसका नाप बताया गया है कि आत्मा कितना बड़ा है। आत्मा की साइज केशाग्र शत भागस्य पुनः शतांश करी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं केश अग्र, हमारा जो यह केश है बाल है, इस बाल के अग्र भाग को, बाल को नहीं, बाल के अग्र भाग की जो साइज है उसके 100 टुकड़े किया जाए, केशाग्र शत भागस्य, एक बाल के अग्र भाग के 100 टुकड़े किए जाए और 100 में से एक टुकड़े को लेकर फिर से उसके 100 टुकड़े किए जाए, पुनः शतांश करी। इसका अर्थ हुआ हमारे बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा जितना होता है उतना आत्मा का साइज है। बताइए कितने छोटे हैं हम, परंतु फिर भी इनके लिए बहुत बड़ा रूम चाहिए, बंगला चाहिए, 2-3 फ्लैट चाहिए। तो इस प्रकार आत्मा सच्चिद आनंद है, और वास्तव में आत्मा के ज्ञान के अभाव में ही संसार में लोग दुखी हो रहे हैं। इस संसार के लोग दुख बाहर ढूंढ रहे हैं, परंतु पता नहीं है कि वास्तविक सुख तो अंदर ही है। जैसे कस्तूरी मृग, आप जानते होंगे कस्तूरी मृग सुगंध के लोभ में बहुत दौड़ता है, बहुत भागता है, ढूंढता है कहां सुगंध आ रही है, कहां स्मेल आ रही है, परंतु उसे पता नहीं होता कि उसी की नाभि से स्मेल आ रही है। ठीक उसी प्रकार हम लोग सुख को ढूंढते हैं, पत्नी में ढूंढते हैं, पुत्र में ढूंढते हैं, धन में ढूंढते हैं, भोजन में ढूंढते हैं, सिनेमा में ढूंढते हैं, सभी जगह पर सुख को ढूंढते हैं, परंतु सुख हमारे हृदय में ही है। केवल इसे समझना होगा। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं यह आत्मा हमारे इस शरीर में हृदय के स्थान में रहती है, अर्थात आत्मा का स्थान हृदय में है, बिल्कुल परमात्मा के बाजू में। यह है आत्मा के विषय में ज्ञान। हरियश्व समझ गए कि हम आत्मा हैं और यह शरीर ही हमारे लिए निज बंधनम, बंधन का कारण है। और जब तक तस्य निर्वाणम अदृष्टवा, जब तक इसका निर्वाण नहीं होगा तो किम असत कर्म भिर्भवेत, असत कर्म करने से क्या लाभ है। असत कर्म का अर्थ होता है कि इस देह के लिए ही कर्म करते रहने से क्या लाभ है। मान लीजिए आपको थोड़ी खुजली आ रही है, परंतु दूसरे के हाथ को खुजाने से क्या लाभ होगा। यदि उसे मिटाना है तो अपना ही हाथ को खुजाइए। ठीक उसी प्रकार इस शरीर को सुख देने से क्या होगा, आत्मा को हम जब सुखी नहीं करेंगे। आत्मा के लिए कर्म होना चाहिए। हरियेश्वर ने कहा असत कर्म अर्थात ये शरीर के लिए कर्म करने से क्या फायदा है। इसलिए निश्चित आत्मा के लिए कर्म होना चाहिए। और आत्मा का कर्म, आत्मा का सबसे बड़ा कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा का सर्वप्रथम कर्तव्य परमात्मा की सेवा करना है। हरियश्व इस बात को समझ गए, परंतु नारद मुनि का दूसरा भी प्रश्न था, याद है सबको कौन सा था। बहुत कम लोग याद रखे हैं। तथैक पुरुषम राष्ट्रम, ये नारद मुनि का दूसरा प्रश्न था। एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, जानते हैं ऐसे कोई राष्ट्र को, कोई जानता है, कोई बता सकता है। नारद मुनि का दूसरा प्रश्न है तथैक पुरुषम राष्ट्रम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, तो सबसे पहले वो राष्ट्र क्या है, क्योंकि ये पजल है, ये पहेली है, इसलिए सबसे पहले इसे हमें समझना होगा ये राष्ट्र किसे कह रहे हैं। राष्ट्र शब्देन चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांडो विवक्षिति। नारद मुनि ने हरेश्वर को पूछा कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें एक ही पुरुष रहता है, तो वंशीधर जी कहते हैं राष्ट्र शब्देन, राष्ट्र का अर्थ होता है 14 भुवन, 14 लोक अर्थात यह ब्रह्मांड। राष्ट्र माने महाराष्ट्र ही नहीं, या गुजरात, या ऐसा नहीं। नारद मुनि ने एक पहली पजल पूछी तो राष्ट्र का अर्थ ये लोग समझ गए कि राष्ट्र का अर्थ नारद मुनि कह रहे हैं चतुर्दशम भुवनात्मक ब्रह्मांडो, ये 14 भुवन वाला ब्रह्मांड ही एक राष्ट्र है। तो इस 14 भुवन वाले ब्रह्मांड को यदि राष्ट्र कह दिया, तो यहां पर नारद मुनि ने कहा कि उसमें एक ही पुरुष रहता है, परंतु हम तो देख रहे हैं 14 भुवन की बात छोड़ दीजिए, 14 में से केवल एक पृथ्वी में ही इतने सारे पुरुष रहते हैं। पृथ्वी में कितने सारे देश हैं, उसमें भी भारत, और उसमें भी महाराष्ट्र, उसमें भी मुंबई, उसमें भी बोरीवली, और उसमें भी एक मेगा पार्टी मधुरम हॉल में कितने पुरुष बैठे हैं। अपने आप को पुरुष मानने वाले कितने लोग बैठे हैं, परंतु नारद मुनि कहते हैं केवल पृथ्वी ही नहीं, पूरे 14 लोकों में मिलकर पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है। तथा एक राष्ट्रम पुरुषम, एक ही पुरुष है। तो राष्ट्र का अर्थ हुआ यह पूरा ब्रह्मांड। हरियश्व इस बात को तुरंत समझ गए, किस प्रकार समझे। एक ऐश्वर्य स्तुर्यो भगवान स्व आश्रय पर तम दश्वा अभवम पुंस किम असत कर्म भीर भवेत। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, परंतु क्या करे संस्कृत में है। ठीक है, इसे हम समझेंगे। हरियश्व समझ गए कि एक एव ईश्वर, संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो एवेश्वर जो है इसको यदि हम अलग करेंगे तो एव प्लस ईश्वर होगा, तो एक एव ईश्वर इसका अर्थ होता है एक, एव का अर्थ होता है ही, एक ही ईश्वर है। हरेश्वर समझ गए, ये पुरुष की बात अर्थात पुरुष माने ईश्वर। तो हरियश्व समझ गए कि ये पूरे ब्रह्मांड में ये 14 लोक पृथ्वी जनलोक मरलोक तपलोक सिद्धलोक ब्रह्मलोक अतल वितल तलातल पाताल रसातल ये 14 लोक ये पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ईश्वर है, एक एव ईश्वर, एक ही ईश्वर है। हरियश्व समझ गए और समझकर तुरंत मुक्त हो गए, परंतु इस संसार में रहने वाले लोग इस छोटी सी बात को नहीं समझ सकते। हरेश्वर समझ गए एक ही ईश्वर है, एक एव ईश्वर। एव शब्द जो है निश्चित रूप से, इसका अर्थ है तुर्य, इसमें एक तुर्य शब्द आया है, तुर्य का अर्थ है और कोई ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। परंतु भारत में किसी को पूछा जाए कि बताओ भगवान कितने हैं, कहते गणपति भी भगवान है, कुछ लोग कहेंगे शिवजी भगवान है, कुछ लोग कहेंगे ब्रह्मा भगवान है, कुछ कहेंगे विष्णु भगवान है, कुछ लोग कहेंगे ये देवी देवता भगवान है, हजारों भगवान। परंतु वास्तविक बात तो यह है कि एक एव ईश्वर, ईश्वर एक ही है। देखिए बहुत हम भारत में रहने वालों के लिए बहुत दुख की बात है। देखिए भारत इतना सांस्कृतिक देश है, भागवत का प्राकट्य हुआ भारत में, भगवत गीता की रचना हुई भारत में, गंगा यमुना सरस्वती सभी पवित्र नदी इस भारत में, भगवान के सभी अवतार इस भारत में, परंतु कितना अज्ञान, भगवान कौन है भारत में रहने वाले किसी को नहीं पता है, हजारों भगवान। और आज तो रोज एक नए नए भगवान बन रहे हैं, बाबा बंगाली और ये बाबा वो बापू। अब देखिए इससे तो अन्य धर्म वाले कितने अच्छे हैं, मुसलमान धर्म में एक ही भगवान, आप देखिए मुसलमानों की संख्या सैकड़ों करोड़ों मात्रा में है, परंतु पूछेंगे भगवान कौन, कहेंगे एक ही अल्लाह। क्रिश्चियन धर्म वालों को पूछेंगे कितने भगवान है, कहेंगे एक ही भगवान जीसस क्राइस्ट। परंतु हिंदू को पकड़कर पूछिए कितने भगवान हैं, कंफ्यूज। इतना भारत पवित्र देश, संस्कृति ज्ञान सब यहां पर, लेकिन कंफ्यूजन कितने भगवान। यहां पर भागवत नारद मुनि हरियश्व इस बात को प्रमाणित कर दिए, एक एव ईश्वर, ईश्वर एक ही है। ये तो ठीक है ईश्वर एक ही है, इतने मानने वाले भी बहुत अच्छे हैं, परंतु कुछ लोग तो यही कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर की सत्ता को ही मिटा देते हैं। प्रायः कई ऐसे लोग हैं जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते हैं, कहते हैं भगवान है ही नहीं। अब ऐसे लोगों को कैसे मनाया जाए। अब देखिए इस संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि नहीं भगवान का अस्तित्व है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि वास्तव में भगवान का अस्तित्व इस संसार में है। और इसके लिए आप जरा सोचिए कि इस संसार में बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बनी हुई है। आप देखेंगे बहुत सुंदर गार्डन में फूल होते हैं, गुलाब का फूल, कमल का फूल, आज तो ये यहां पर आया है कमल का फूल, कितनी सुंदर डिजाइन, कितने सुंदर सुगंध और कितना सुंदर रंग किया गया है। यदि ऐसा फूल किसी को ड्रॉइंग भी करना हो तो भी नहीं कर सकता, इतना सुंदर फूल है। मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दूं कि मानो कोई बहुत सुंदर गुलाब का पिक्चर ड्रॉ करके आया है और आपके सामने आपको बताए ये कैसा लगा, हम कहेंगे अच्छा लगा, तो देखने वाला कहेगा किसने बनाया, तो दिखाने वाला कहेगा नहीं ये तो ऑटोमेटिक बन गया। इसे मान सकते हैं हम। अब देखिए, एक छोटा सा ड्राइंग ऑटोमेटिक नहीं बन सकता है, तो ये पृथ्वी ऑटोमेटिक बन जाएगी। इस पृथ्वी में बहुत सुंदर वस्तुएं हैं, बहुत सुंदर चीज है। इसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वी को बनाने वाला कोई है। जैसे बहुत सुंदर घड़ी होती है, तो यह घड़ी इतनी अच्छी है, इसका अर्थ है कि इसको कोई बनाने वाला है। रोज हम रोटी खाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि रोटी बनाने वाला कोई है। इतना सुंदर व्यवस्थित रूप में यह सब चल रहा है, इसका अर्थ है कि कोई ना कोई है। किसी भी मेकिंग के पीछे मेकर का हाथ होता है। विदाउट मेकर, बिना बनाने वाले के मेकिंग कभी नहीं होता है, बनावट कभी नहीं होती। आज तो स्टूडेंटों को कॉलेज और स्कूल में सिखाया जाता है कि यह संसार किसी ने नहीं बनाया, यह पृथ्वी ऑटोमेटिक बन गई बाय चांस, बिग बैंग थियरी हम लोग तीसरी में पढ़े थे। एक दिन बहुत बड़ा डार्विन का सिद्धांत था। एक दिन बहुत बड़ा धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा बम फूटा और इतनी सुंदर पृथ्वी बन गई। अरे मूर्ख लोग, कहीं बम फूटने से सृष्टि होती है? कभी ऐसा सुना कि एक जगह पर बम फूटा और बिल्डिंग बन गई? धमाका होने से, बम फूटने से प्रलय होता है, नाश होता है, सृष्टि नहीं होती है। और पढ़ाते हैं कि विस्फोट हुआ और सृष्टि बन गई, बिल्कुल गलत सिद्धांत। न्यूटन जो थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे, और न्यूटन बहुत आस्तिक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जब देखा कि ये सब साइंटिस्ट इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया, अपनी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बहुत सुंदर मॉडल बनाया। उस मॉडल में बहुत सुंदर पृथ्वी बनाई, उस पर घास उगाए और नकली सूर्य बनाया, वृक्ष बनाए, बहुत सुंदर एक मॉडल था। और उसको ऑन करते ही जैसे यह पृथ्वी चलती है, वृक्ष उगते हैं, हवा चलती है, बारिश गिरती है, पूरा एक सृष्टि का मॉडल बनाया और अपने सभी वैज्ञानिक मित्रों को बुलाया। और बुलाकर जैसे ही वैज्ञानिक उनके मित्र थे उस लेबोरेटरी में आए, स्विच ऑन करते ही जैसे यह सृष्टि चलती है, हवा बहती है, पत्ते हिलते हैं, बारिश होती है, वैसे होने लगा। तब न्यूटन के जितने भी फ्रेंड्स वैज्ञानिक थे पूछने लगे, अरे इतना सुंदर मॉडल किसने बनाया, इतना सुंदर मॉडल किसने बनाया? तब न्यूटन ने कहा कि अब क्या बताऊं, कल रात को मैं सो रहा था बेडरूम में, तो अचानक लेबोरेटरी में धमाका हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, और लेबोरेटरी में आकर देखा तो ये बना हुआ था। सारे साइंटिस्ट कहने लगे, क्यों मजाक कर रहा है हमारे साथ, मजाक करने के लिए हम ही मिले थे। न्यूटन ने कहा, मैं तो तुम पांच लोगों के साथ मजाक कर रहा हूं, तुम पूरी दुनिया को ठग रहे हो। धमाके से एक छोटा सा मॉडल तैयार नहीं हो सकता है, तो आप लोग कहते हो ये पूरी दुनिया धमाके से बनी, कभी हो सकता है? कभी नहीं। इतनी सुंदर सृष्टि है, तो इस सृष्टि को कोई बनाने वाला है, बिना बनाने वाले ये सृष्टि कभी हो नहीं सकती। इसलिए इसका अर्थ है कि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है। कौन है ये सब बाद में देखेंगे, परंतु जो इस सृष्टि को बनाता है वही भगवान है। दूसरा प्रमाण और एक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में इस संसार में भगवान का अस्तित्व है। इसका अर्थ है कि इस संसार में कई सारी वस्तु नियम से चल रही है। जैसे सूर्य है, बिल्कुल नियमित रूप से सुबह उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, बिल्कुल नियम, टाइम टू टाइम। हमें यदि उठने में लेट हो जाए, ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाए, परंतु सूर्य को उगने में कभी कभी लेट नहीं होता है। वो अपने टाइम से उसका उदय होता है, अस्त होता है, बिल्कुल नियमित रूप से। हम देखते हैं कि ये समुद्र जो है बिल्कुल अपने नियम से, अपनी सीमा रेखा तक ही रहता है, कभी उसे बाहर नहीं आता है। नहीं तो सब डूब जाता, पूरा बंबई तो समुद्र तट पर ही है। अब देखिए नरीमन पॉइंट पर जाकर आप कभी उस दीवार के ऊपर खड़े रहकर देखिए, समुद्र बस अपनी सीमा रेखा तक, यद्यपि समुद्र में अगाह मात्रा में पानी है, क्या 15-20 फुट आगे नहीं आ सकता है? परंतु नहीं आता, बिल्कुल अपने नियम में स्थित है। चंद्रमा शाम को उदय होता है तो हो ही जाता है। एक साल में 3 ऋतु आती हैं तो वह आ ही जाती हैं, ऐसा नहीं कि कभी जल्दी कभी लेट। तो यह सब कुछ नियम से चल रहा है। यदि संसार में यह सब नियम से चल रहा है, इसका अर्थ है नियम बनाने वाला कोई है। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, सिग्नल नियम बनाया है, रेड सिग्नल स्टॉप हो जाओ, ग्रीन सिग्नल चलने लगो, तो रास्ते में सिग्नल है, इसका अर्थ है कि इसे किसने रखा है कि ऑटोमेटिक आ गया। ऑटोमेटिक नहीं आता है, यदि नियम है तो नियम को बनाने वाला है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारी वस्तु नियम से चलती हैं, और वास्तव में उस नियम को बनाने वाले भगवान हैं। उस नियम को बनाने वाले को ही भगवान कहा जाता है। और भी कई बातों से हम इस बात को समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान का अस्तित्व है। आप देखिए किसी भी फुटबॉल को, बॉल को हवा में रखिए, नहीं रहेगा, परंतु इतनी बड़ी पृथ्वी हवा में लटक रही है, कोई आधार नहीं। और एक पृथ्वी नहीं, कई सारे ग्रह बिल्कुल वायु में, हवा में लटक रहे हैं, कभी गिर नहीं जाते हैं। तो वास्तव में इस ग्रहों को, इस पृथ्वी को, मंगल को, इत्यादि अलग अलग ग्रहों को हवा में टिकाए रखने वाला कोई है। भगवत गीता में कहते हैं, मतः पर तरम नान्यत कश्चित दस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। आपके पास मोती की माला होती है, जैसे ये माला, ये मोती की इतनी सुंदर माला यदि हम देखते हैं, तो मोती की यह सुंदर माला के पीछे किसी धागे का हाथ होता है। यद्यपि धागा दिखता नहीं है, परंतु यह सुंदर बनावट से हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, यह समझ सकते हैं कि इतनी सुंदर मोती की माला है, इसका अर्थ है कि पीछे धागा है। ठीक उसी प्रकार यह ग्रह, यह नक्षत्र, तारे, यह सब कुछ इतने सुंदर बनावट से चल रहे हैं, इसका अर्थ है इसके पीछे किसी धागे का, अर्थात भगवान का हाथ है। तो यह सब दृष्टांतों से यह साबित होता है कि भगवान का अस्तित्व है। कुछ लोग इस बात को भी जानते हैं भगवान का अस्तित्व है, परंतु भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं भगवान एक पोस्ट है, कोई भी भगवान बन सकता है। हम यदि तपस्या करेंगे हम भगवान हो जाएंगे, आप तपस्या करोगे तो आप हो जाएंगे, हम सब तपस्या करेंगे तो सब लोग भगवान हो जाएंगे। भगवान को पोस्ट समझते हैं। तो कुछ लोग भगवान को निराकार कहते हैं, निराकार कोई आकार ही नहीं। तो कुछ लोग भगवान को कहते हैं कि भगवान थे परंतु अभी मर गए हैं। अच्छा है, पूजा आरती करने की कोई जरूरत ही नहीं, मार डाला भगवान को। भगवान थे, हम विश्वास करते हैं भगवान थे, परंतु फिलहाल मर गए हैं, यदि होते तो इतना दुख थोड़ी ना होता। सब लोगों की धारणा है। कुछ लोग कहते हैं भगवान शक्ति मात्र है, शक्ति ही भगवान है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रकृति ही भगवान है। सब लोगों की भगवान के बारे में अलग अलग धारणा है। और जो बहुत उच्च कक्षा के मूर्ख होते हैं वो तो यही कहते हैं भगवान शून्य है, शून्य मतलब है ही नहीं, निराकार। तो एक एव ईश्वर, ईश्वर एक ही है, तो वह कौन है, कैसे है? तो वेदों में कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है, भगवान कैसे हैं? वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद्ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्म इति भगवान इति परमात्मा इति शब्दते। भगवान एक साथ 3 रूप में होते हैं, कौन सा रूप है? कहते हैं भगवान का एक साथ तीन रूप होता है। एक तो भगवान का साकार स्वरूप, दूसरा उसी भगवान का परमात्मा स्वरूप, और तीसरा उसी भगवान का ब्रह्म स्वरूप। भगवान ब्रह्म के रूप में संसार के सभी कण कण में रहते हैं, वही भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, और वही भगवान उसी समय साकार स्वरूप में अपने धाम में भी रहते हैं। यह है भगवान का स्वरूप, इसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा जाता है। कुछ लोग भगवान को निराकार कहते हैं, यह गलत नहीं है, भगवान को निराकार कहना गलत नहीं, परंतु अपूर्ण है। यह सत्य है कि भगवान निराकार है, परंतु भगवान केवल निराकार ही नहीं, भगवान निराकार के साथ साथ ब्रह्म के रूप में भगवान निराकार है, परंतु वही भगवान निराकार के साथ साथ अपने धाम में साकार रूप में भी है। और वही भगवान, जैसे योगी लोग अपने हृदय में ध्यान करते हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में भी है। तो प्रश्न हो सकता है कि एक ही भगवान तीन, एक ही साथ तीन स्वरूप में कैसे? ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी सूर्य का दृष्टांत देते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ग्रह और सूर्य का देवता, एक साथ तीन लोग होते हैं। सूर्य का प्रकाश भगवान का ब्रह्म स्वरूप समझिए, सूर्य का गोला परमात्मा रूप समझिए, और सूर्य के जो देवता है विवस्वान, उसे भगवान साकार रूप समझिए। इस प्रकार भगवान का साक्षात्कार तीन श्रेणी में होता है। कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं, परंतु उससे जो बुद्धिमान होते हैं वे उसी भगवान को परमात्मा के रूप में मानते हैं, परंतु उससे भी बुद्धिमान होते हैं वे भगवान को निराकार भी मानते हैं, परमात्मा के रूप में भी मानते हैं, और साकार रूप में भी उसकी पूजा करते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा इस बात को आप समझ सकते हो। एक बार एक गांव में बहुत बहुत सालों के बाद रेल की पटरी बिछाई गई। गांव में रेल नहीं थी पहले, तो एक गांव के 10-15 किलोमीटर दूर रेल की पटरी आई, और गांव वालों को पता चला रेल आने वाली है। सब लोग खुश हो गए, किसी ने कभी जीवन में रेल को देखा ही नहीं था, ट्रेन को देखा ही नहीं था। तो गांव में तो रोज सुबह लोग सुबह सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त 3-4-5 बजे जगकर खेत में चले जाते हैं और रात दिन परिश्रम करते हैं। और दूसरे दिन उस रेल का उद्घाटन था, शुरू होने वाली थी। गांव वालों ने मीटिंग की, देखो हम सब लोग रेल देखने जाएंगे तो ये, क्योंकि बारिश की ऋतु चल रही है और खेती का मौसम है, हम सब लोग चले जाएंगे तो खेती रह जाएगी, एक काम करते हैं हम 3 जन को भेजते हैं इस रेल को देखने के लिए, और ये 3 जन रेल को ट्रेन को देखकर आएंगे और हम सबको बताएंगे। सभी गांव वालों ने कहा ओके ठीक है, ऐसा किया जाए। 3 जन को चुना और कहा कि कल आप जाकर उस रेल को देखकर आना, ठीक है। सब लोग शाम को सो गए। एक जन था बहुत उतावला था, उत्सुक था, फिर रात को सो ही नहीं पाया। सुबह 3-3:30 बजा अंधेरे में ही वह दौड़ने लगा उस रेल को देखने के लिए। तो रेल अंधेरे में शुरू हो गई थी, लाइट शुरू थी, अंधेरे में लाइट शुरू होती है। तो रेल दूर से आ रही थी, तो दूर से आप देखेंगे ट्रेन को देखते हैं तो केवल प्रकाश दिखता है। तो एक गांव वाला गया दौड़कर, दूर से रेल आ रही थी, देखा प्रकाश, तुरंत वहां से वापस चला गया। और गांव वालों ने पूछा कैसी थी रेल, कैसी थी? कहते प्रकाश, ज्योति, ब्रह्म ज्योति। ये गलत नहीं है, रेल में प्रकाश है, परंतु केवल प्रकाश ही नहीं, उसके साथ भी बहुत कुछ है। लेकिन दूसरा व्यक्ति गया, थोड़ा बहुत उजाला हो चुका था, दूर से देखा तो प्रकाश भी दिखा, और डिब्बे जैसा आकार दिखा और कहा अरे डिब्बा है तो। दौड़कर गांव में वापस आया, गांव वाले ने पूछा आपको कैसा कैसी लगी रेल, कहा के डिब्बे जैसी, डिब्बा था और ऊपर एक बत्ती थी। अच्छा अच्छा। तीसरा व्यक्ति गया, तीसरा तो प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गया, रेल आई खड़ी रही, देखा लाइट भी है डिब्बा भी है, परंतु अंदर गया तो बहुत सुंदर सीट भी थी, पंखे भी थे, विंडो भी थी, बहुत कुछ अंदर उन्होंने देखा। और वह जब गांव में आया तो गांव वाले ने पूछा तुम बताओ रेल कैसी है, तो कहा देखो रेल में प्रकाश भी था, डिब्बा भी था, उसमें सीट भी थी, विंडो भी थी, पंखे भी थे, बाथरूम भी था। अब आप ही बताइए, तीन लोगों ने रेल का साक्षात्कार किया, ट्रेन का साक्षात्कार किया, ये तीनों में सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी कौन निकला, ज्योति वाला कि डिब्बा वाला, तीसरा व्यक्ति। भक्तों उसी प्रकार भगवान का साक्षात्कार कुछ लोग प्रकाश के रूप में करते हैं, ब्रह्म प्रकाश, ध्यान करो प्रकाश का। तो ये गलत नहीं है, भगवान ब्रह्म के रूप में है परंतु केवल ब्रह्म ही नहीं है, जैसे ट्रेन में लाइट है परंतु केवल ट्रेन केवल लाइट ही नहीं है, भगवान ब्रह्म के रूप में भी है, भगवान परमात्मा के रूप में भी है और वे साकार रूप में भी है। इस प्रकार से भगवान की पहचान है, इस प्रकार से भगवान को समझना चाहिए। और वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं, जो सबसे बड़े बुद्धिमान होते हैं, भगवान के तीनों रूपों को स्वीकार करते हैं। और वास्तव में ये तीन रूप में भी भगवान का जो वास्तविक रूप है वह है साकार रूप, यह है मुख्य रूप। तो ठीक है, भगवान का रूप भी पता चल गया तो प्रश्न यह होता है भगवान है कौन, सबसे बड़ा प्रश्न तो अब आ रहा है, क्योंकि श्लोक में ही कहा गया है एक एव ईश्वर तुरियो, एक ही ईश्वर है और वह कैसे है, तुरियो भगवान, स्व और पर आश्रय, स्व आश्रय पर। तो भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन है, भगवान उसे कहते हैं जो ईश्वर हो। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, कंट्रोलर। देखिए भगवान बनने के लिए भी कुछ योग्यता होती है, बहुत सारी योग्यता है, परंतु कुछ योग्यता हम आपके सामने रख रहे हैं। भगवान वही हो सकता है जो ईश्वर हो, ईश्वर माने नियंता, कंट्रोलर, ये पहली योग्यता। भगवान वही हो सकता है जो सभी वस्तु के स्रोत हो, जो सभी वस्तु के आश्रय हो, स्व और पर सबके आश्रय जो है उसे भगवान कहा जाता है। तीसरा, भगवान उसे कहा जाता है जो पूर्ण हो, अधूरा नहीं, जो पूर्ण हो, पूर्ण का अर्थ जानते हैं, जो पूर्ण हो और जिससे कुछ वस्तु निकल जाए वह वस्तु भी पूर्ण हो और बचने वाला भी पूर्ण रहे। और भगवान उसे कहा जाता है जो एक ही समय पर सभी जगह पर व्याप्त हो। और पांचवी डेफिनेशन, भगवान उसे कहा जाता है जिसमें छह प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में हो। तो सबसे पहली बात, एक एव ईश्वर, जो कंट्रोलर हो उसे भगवान कहा जाता है। अब बताइए इस संसार का कंट्रोलर कौन है। देखिए हम भावुकता की दृष्टि से नहीं, एक सिद्धांत की दृष्टि से किसी भी विषय को प्रामाणित करके यहां पर बात करेंगे। जो कंट्रोलर हो उसे भगवान कहा जाता है। और कंट्रोलर कौन है, हम कंट्रोलर हैं। कुछ लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, भगवान उसे कहा जाता है जो सब का कंट्रोलर हो। ये तो अपनी पत्नी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, कैसे भगवान हो पाएंगे। एक पत्नी को कंट्रोल करने में दम निकल जाता है और अपने आप को भगवान कहते हैं। भगवान उसे कहते हैं जो सभी मनुष्य को, सभी देवता सब को कंट्रोल में रखे और हम और आप क्या बताएंगे। इस संसार के सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा कंट्रोलर यदि कोई है तो कहते ईश्वर। ईश्वर माने कंट्रोलर। कंट्रोलर तो बहुत सारे हैं, जैसे इंद्र जो है वे बारिश को कंट्रोल करता है, कुबेर धन को कंट्रोल करते हैं, वरुण देव समुद्र को कंट्रोल करते हैं, और साधारण मनुष्य अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलर तो बहुत हैं, परंतु परम कंट्रोलर परम ईश्वर कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमम, परम ईश्वर परम कंट्रोलर यदि कोई है तो सत चिद आनंद विग्रह धारण करने वाले एकमात्र कृष्ण ही इस जगत के इस ब्रह्मांड के परम कंट्रोलर है। देखिए मेरा कथन नहीं है न तो आपका कथन, ये ब्रह्मा जी का कथन नहीं, इसलिए हम सबको मानना होगा। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमम कृष्ण, कृष्ण ही परम ईश्वर है। छोटे मोटे ईश्वर हो सकते हैं, कोई देवी देवता इत्यादि दो पांच लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु पूरे ब्रह्मांड को सबको कंट्रोल करने वाले को ईश्वर कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, और ये जितनी भी संसार में जितनी भी वस्तु है भगवान कृष्ण के द्वारा कंट्रोल। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं मद भयाति वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात वर्षत इंद्र दह्यत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। कहते मेरे भय से इंद्र बारिश करता है, मेरे भय से रोज सूर्य उदय होता है, मेरे ही भय से यह अग्नि ज्वलन करता है, और मेरे ही भय से मृत्यु सबको मारता रहता है। मत भयात, भगवान के भय से कृष्ण के डर से उनके इशारे से यह सब चलता है। भगवत गीता में भगवान ऐलान करते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन हेतु नाने ये कौनते ये जगत भी परिवर्तते। एक कृष्ण ही ऐसे निकले जो पूरी दुनिया के बीच में उस कुरुक्षेत्र की भूमि में करोड़ों लोग खड़े थे और ऐलान कर रहे थे मैं ही सबका ईश्वर हूं, और कोई उंगली नहीं उठा पाया। एक ने उठाई, शिशुपाल नामक व्यक्ति। जैसे ही भगवान कृष्ण को भगवान मानने से नकार दिया, सिर कट गया। आप देखिए मुसलमान का जो ग्रंथ है कुरान, और कुरान लिखने वाले मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर ने कुरान में लिखा है कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, मैं अल्लाह का दूत हूं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। बाइबल लिखा यीशु ख्रिस्त ने, जीसस क्राइस्ट ने, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा मैं भगवान हूं। बाइबल में लिखा है आई एम नॉट अ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का पुत्र हूं। परंतु गीता कहने वाले भगवान श्री कृष्ण ऐलान करते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, और यह सब कुछ मेरे इशारे से चलता है। मई अधि अक्षेण, मई माने मेरी, अधि माने अधिकार में, और अक्षेण माने आंख के। कृष्ण कहते हैं मेरे आंख के इशारे से यह प्रकृति चलती है, बोलना भी नहीं पड़ता है। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं एक ऐसा धर्म है, ऐसा मत है, प्रकृति ही सब कुछ है। हम कहते हैं भगवान को मानो, क्या भगवान, प्रकृति ही भगवान, प्रकृति ही सब कुछ है। परंतु वास्तव में भगवान प्रकृति के भी स्वामी है। ये प्रकृति भगवान के इशारे से चलती है, भगवान जैसे इशारा करते हैं वे प्रकृति नाचती है। और भगवत गीता में केवल भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने कहा मई अग्देशण अधि अक्षेण प्रकृति ही कहकर दूसरी क्षण में दिखा भी दिया। महाभारत का प्रसिद्ध प्रसंग आप सब जानते होंगे, अभिमन्यु को जब छल करके जयद्रथ ने मार डाला और अर्जुन को पता चला कि जयद्रथ ने मेरे पुत्र को मारा है, उस दिन अर्जुन ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली। उस कुरुक्षेत्र की भूमि के युद्ध में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि कल के दिन में मेरे पुत्र अभिमन्यु को मारने वाले जयद्रथ को मौत के घाट उतार दूंगा, और यदि जयद्रथ को नहीं मार सका तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। कल संध्या समय तक यदि जयद्रथ नहीं मरा, अपने ही गांडीव से मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। जयद्रथ को यह बात पता चल गई और सोचा कि यदि कल मैं कुरुक्षेत्र की भूमि में आया और अर्जुन मेरे सामने आ गया तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए दूसरे दिन युद्ध में वो आया ही नहीं। कहते हैं कि वे पाताल में जाकर छिप गया, और अर्जुन ने उस दूसरे दिन जयद्रथ को बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, पूरी कुरुक्षेत्र की भूमि को छान मारा, परंतु जयद्रथ मिला नहीं। तब अंत में अर्जुन नर्वस हो गया, संध्या का समय आ गया, शत्रु मिला नहीं। तब अर्जुन, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं जाती है, क्षत्रिय जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे निभा कर ही रहते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा, संध्या समय तक जयद्रथ को न मारूं, मैं स्वयं मर जाऊंगा। संध्या समय हो गया और अर्जुन अपने ही गांडीर से अपना ही वध करने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था। जयद्रथ को, जयद्रथ ने देखा कि संध्या समय हो गया है और मेरा शत्रु अर्जुन आज मर रहा है, और दुश्मन के मरने का धनाजा इस आंखों से जरूर देख लेना चाहिए। अर्जुन यहां मरने की तैयारी, और जयद्रथ अर्जुन को मरता हुआ देखने के लिए पाताल से बाहर निकला, कुरुक्षेत्र की भूमि में आया, और आकर अर्जुन अपने गांडीर से अपना वध करने जा ही रहा था, जयद्रथ आकर जोर जोर से हंसने लगा, ठठाकर हंसने लगा। संध्या का समय हो चुका है, अर्जुन अपने आप को मारने जा रहा है, परंतु उसी समय एक आश्चर्यमय घटना, वे जो संध्या का समय था अंधेरा हो गया था, वह अंधेरा दूर हुआ, बहुत बड़ा प्रकाश आया, सूर्य सिर पर आया, और देखा तो दोपहर के 2:30 बजे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अर्जुन संध्या समय नहीं हुआ है, ये तो मैंने केवल सूर्य को इशारा किया था, इशारा करने से बेचारा छिप गया था। दुश्मन तुम्हारे सामने है, संध्या नहीं हुई है, दोपहर है, मार डालो इसे। और अर्जुन ने उसी समय अपने गांडीव से जयद्रथ का वध कर दिया। क्या इस कथा से समझ में नहीं आता है? भगवान श्री कृष्ण ने केवल इशारा किया, सूर्य छिप गया। मई अधि अक्षेण प्रकृति, ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ये सब भगवान के इशारे से चलते हैं। इसे कहते हैं कंट्रोलर, ईश्वर। ईश्वर का अर्थ कंट्रोलर, और सभी कंट्रोलर के कंट्रोलर यदि कोई है तो वह है भगवान श्री कृष्ण, वे ही सबको चलाते हैं। यहां तक मनुष्य को, देवी देवता सबके कंट्रोलर भगवान कृष्ण। इसीलिए तो भागवत में बार बार इंद्र सभी देवताओं का राजा होने के बाद भी जब उसके ऊपर आपत्ति आती है तो कृष्ण के पास जाता है। साफ साफ पता चलता है कि ये देवता भी भगवान के पास जाते हैं, और उसे भगवान से, कृष्ण से लेकर संसार में सबको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देते रहते हैं। परंतु परम ईश्वर, परम नियंता, परम कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है। और कृष्ण के अलावा यदि आपको कोई दिख रहा हो तो आप बता सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मैं जो बोल रहा हूं आज के प्रवचन में, किसी को कोई भी डाउट हो हाथ ऊपर करके खड़ा होकर बोल सकता है, और यदि डाउट नहीं है तो यहां से जो बोला जा रहा है वह स्वीकार करना ही होगा। दो ऑप्शन है आपके पास। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, और कृष्ण ही सबके ईश्वर है। दूसरी बात, भगवान वो हो सकता है जो सभी वस्तु के स्रोत है। स्रोत माने सभी वस्तु के उद्गम स्थान। मान लीजिए आपको पूछा जाए कि आपका स्रोत क्या है, तो आपका स्रोत आपके पिताजी हैं। आपके पिताजी का स्रोत क्या है, उनके पिताजी। उनके पिताजी का उद्गम स्थान कौन सा, उनके पिताजी। तो इस संसार में इस प्रकार से ऐसे गिनते 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 जिस एक व्यक्ति से यह सब कुछ प्रकट होता है उसे भगवान कह सकते हैं। अच्छा, तो वो कौन है? हमारे जो पूर्वज हैं हमारा स्रोत हमारे पिताजी, सब लोग अपना अपना गिनिए। अब दुर्भाग्य है कि किसी को याद नहीं है पिताजी का नाम, उसके पिताजी, उसके पिताजी, तीन चार पीढ़ी का नाम याद होता है। परंतु वास्तव में हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, इस प्रकार से गिनते गिनते अंत में मनु महाराज के पास हम आकर अटकेंगे। क्योंकि ये मनुष्य की सृष्टि मनु और शत्रुपा से हुई। ये जितने भी मनुष्य हैं, ये सारे मनुष्य मनु महाराज से प्रकट हुए, इसीलिए इसे मनुष्य कहा जाता है। और संस्कृत में मानुज कहते हैं। ज का अर्थ होता है जन्म, और मनु का, मानु का अर्थ होता है मनु महाराज। जिसका जन्म मनु महाराज से हुआ है उसे मानुज या मनुष्य कहते हैं। ये शास्त्र का सिद्धांत है। परंतु आज की पढ़ाई लिखाई में, स्कूल और कॉलेज में, बोलो बच्चों मनुष्य कहां से आए? बच्चे कहते बंदर से है? बहुत सुंदर आकृति बनाते हैं बुक में, किताब में, कि पहले बहुत बड़े बंदर थे, फिर वह बंदर दो पांव पर चलने लगे, फिर धीरे धीरे करके उसके बाल चले गए, फिर उसकी पूंछ भी चली गई, और फिर हम धीरे धीरे करके इस स्थिति में आ गए, मनुष्य बन गए। इसका अर्थ है आपके पूर्वज, आपके दादाजी बंदर थे। दूसरे शब्दों में गाली दे रहे हैं। अब देखिए वास्तव में बिल्कुल गलत सिद्धांत है। ये भी डार्विन का सिद्धांत, न जाने कहां से ये डार्विन आ गया। ये भी डार्विन ने बताया कि मनुष्य बंदर से आए हैं। वास्तव में विदेश, अमेरिका में, ऑक्सफोर्ड में, ये सब इस पर बैन लगा दिया गया है कि बच्चों को ऐसा गलत मत पढ़ाओ। परंतु भारत में आज भी पढ़ाया जाता है। जिस भारत से भागवत निकला, जिस भारत से गीता, जहां से ज्ञान प्रकट होता है, वहां पर आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है मनुष्य बंदर से आए। वास्तव में यह मनुष्य की उत्पत्ति मनु महाराज से हुई। ब्रह्मा जी के दो संतान मनु और शत्रुपा, और मनु और शत्रुपा से मनुष्य की सृष्टि हुई। तो ये मनुष्य का अंत, हम तो स्रोत की बात कर रहे हैं, ये सभी मनुष्य का अंत मनु और शत्रुपा के पास आता है। अच्छा, मनु और शत्रुपा का स्रोत क्या है? ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी की दोनों भुजा से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का स्रोत क्या है? ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? भगवान विष्णु से। अब बताइए सबका स्रोत कौन है? भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण, सभी के स्रोत के भी स्रोत यदि कोई है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण ही सबके स्रोत है। यह है दूसरा प्रमाण। यह है दूसरा प्रमाण, इसे भगवान कहते हैं। तीसरा, भगवान किसे कहते हैं? जो सभी जगह पर एक ही समय में सब जगह पर व्याप्त हो, एक ही समय में सब जगह पर व्याप्त हो, उसे भगवान कहते हैं। तो आजकल के बापू बाबा तो निकल ही जाएंगे इसमें से, क्योंकि एक साथ बस दो जगह पर भी नहीं रह सकते हैं, सब जगह पर कैसे रहेंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में एक ही साथ सभी जीवों के हृदय में, और ब्रह्म के रूप में एक ही साथ सभी जगत में, न केवल पृथ्वी अपितु पूरे ब्रह्मांड में, सभी कण कण में भगवान विष्णु व्याप्त है। विष्णु का अर्थ ही होता है व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त इति विष्णु। जो एक समय पर सभी जगह पर व्याप्त हो उसे विष्णु कहते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु ही एक ऐसे हैं जो एक समय पर सभी जगह पर व्याप्त है। और यहां पर भगवान शब्द आया है, एक एव ईश्वर, एक ही ईश्वर है और वही भगवान है। इसका अर्थ है कि भगवान वही हो सकता है जो ईश्वर हो, कंट्रोलर हो। और भगवान शब्द के ऊपर यदि विचार किया जाए, भगवान किसे कहते हैं? यदि आप भगवान शब्द की डेफिनेशन समझ गए तो आप भी पता लगा सकते हो भगवान कौन है। ये भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान शब्द के ऊपर हम कुछ दृष्टि डाल रहे हैं, यहां तो ऐश्वर्य लिखा है। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक एव ईश्वर, एक ही ईश्वर है और एक ही भगवान है। कौन है? कहते हैं भगवान उसे कहा जाता है। भगवान में दो शब्द है, भग और वान। तो भग शब्द का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्य श्रेय, ज्ञान वैराग्यश्चैव शशणाम भग इति गणा। भग का अर्थ होता है छह ऐश्वर्य, और वान का अर्थ होता है प्राप्त करने वाला। जिसके पास छह प्रकार के गुण हो उसे भगवान कहा जाता है। जिसमें छह प्रकार के गुण परिपूर्ण मात्रा में हो वही भगवान हो सकता है। ये भगवान संज्ञा उसे ही दे सकते हैं। तो ये छह गुण कौन से हैं? कहते हैं ऐश्वर्यस्य, सबसे पहला गुण है सुंदरता। जिस व्यक्ति में संपूर्ण सुंदरता हो, जिस व्यक्ति में संपूर्ण शक्ति हो, बल हो, जिसमें जिसके पास संपूर्ण धन हो, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो, जिसके पास संपूर्ण यश हो और जिसके पास संपूर्ण वैराग्य हो, ये छह चीज संपूर्ण मात्रा में, परिपूर्ण मात्रा में यदि किसी के पास है तो उसे भगवान कह सकते हैं। तो बताइए ये छह चीज किसके पास है? हम तो भाई बहुत पढ़े हैं, बहुत सुने हैं, और इस पर एक ही निर्णय निकलता है कि ये छह चीज एकमात्र कृष्ण के पास है। यदि कृष्ण के अलावा और किसी को कोई दिख रहा है तो हाथ ऊपर करके खड़े होकर बोल सकते हैं, शुरू प्रवचन में छूट है। और यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो यहां जो बोल रहे हैं उसे स्वीकार करना ही होगा। सबसे पहले ये छह गुणों में सबसे पहला गुण है सुंदरता। इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर, केवल इस संसार ही नहीं, भौतिक आध्यात्मिक सभी जगत में यदि कोई सुंदर है तो एकमात्र कृष्ण। कृष्ण के अलावा और कोई सुंदर है ही नहीं। ब्रह्मा जी तो यहां तक कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कृष्ण कितने सुंदर हैं? कहते हैं करोड़ों करोड़ों कामदेव जिसकी सुंदरता को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। यह है कृष्ण की सुंदरता, अद्भुत सुंदरता, जो श्याम वर्ण के हैं फिर भी सुंदर है। एक संत तो बहुत सुंदर कहते हैं कृष्ण ही सुंदर है और बाकी सब छछुंदर है। ये आजकल के हीरो हीरोइन जो सुंदर सुंदरी, वर्ल्ड यूनिवर्स इत्यादि, जो मिस यूनिवर्स, ये सब छछुंदर हैं। ये हाड़ मांस के बने हुए लोथड़े मात्र हैं, सुंदरता कोई नहीं है। और भगवान में न तो कोई हाड़ मांस कुछ नहीं होता है, भगवान सच्चिद आनंदमय है, संपूर्ण सुंदर है, और लाखों लोग उसकी सुंदरता पर मरते रहते हैं। आप देखिए भगवान की सुंदरता, कृष्ण का आप कहीं भी फोटो देखेंगे, कहीं भी उनकी मूर्ति विग्रह देखेंगे, कितनी सुंदर देखने में। देखिए बनाने वाले ऐसा नहीं कि सब लोग भक्त लोग ही कृष्ण की मूर्ति का ड्राइंग करते हैं। कृष्ण के बारे में जो जानते भी नहीं है, जो पापी भी होते हैं, वह भी कृष्ण का ड्राइंग करते हैं तो कितना सुंदर करते हैं। आपने देखा इस संसार में कभी भी कृष्ण की मूर्ति और फोटो में मूछ लगी हुई है? कभी नहीं। कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इस संसार में जो सुंदर होते हैं, मान लो सुंदर हो भी जाए तो कितने दिन तक रह सकते हैं? कई साल पहले बहुत अच्छे हीरो हीरोइन बॉलीवुड में थे, लेकिन आज बूढ़े हो गए, कोई पूछता भी नहीं है, गाली देते हैं, और आज जो है उसको कल कोई नहीं पूछेगा। ये सुंदरता जो है कितने समय तक रहती? बूढ़े हो जाते हैं, परंतु कृष्ण यद्यपि आद्यम पुराण पुरुषम, यद्यपि सबसे पुराने हैं, सबके स्रोत हैं, परंतु नव यौवनम च, परंतु आज भी नव युवान अवस्था में है। कभी बूढ़े नहीं होते हैं। आपने कभी देखा कृष्ण को दाढ़ी उगी लग गई है? दाढ़ी वाले कृष्ण, मूछ वाले कृष्ण। कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण करीबन 100 साल के ज्यादा वय के थे। आज यदि किसी व्यक्ति का 100 साल हो गया हो, वो कैसा दिखेगा? आंख की पपनी इतनी नीचे आ जाती है, ऐसा ऊपर करके देखता है। लेकिन देखिए कुरुक्षेत्र की भूमि में बिल्कुल 9-16 साल के युवान लगते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। यह है सुंदरता कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व सुंदर, सबसे सुंदर। यह है पहला गुण। दूसरा गुण, और यहां तक अब कितनी बात करूं भगवान की सुंदरता। शिवजी जो कामदेव को भस्मीभूत करने वाले हैं, साक्षात कामदेव शिवजी की तपस्या को तोड़ने के लिए आया, परंतु कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। ऐसे शिव जब भगवान श्री कृष्ण के मोहिनी स्वरूप को देखे तो वह भी लट्टू हो गए। संसार का सबसे बड़ा वैरागी, संसार का सबसे बड़ा वैरागी कृष्ण को देखकर पानी पानी हो गया। उस समय भी शिवजी ने भगवान की महिमा को गाया है, प्रभु आपसे सुंदर कोई है ही नहीं। यह है भगवान की सुंदरता। तो पहला गुण है सुंदरता भगवान कृष्ण में। और किसी में है बताइए? कृष्ण के अलावा और कोई सुंदर नहीं। दूसरा गुण, भगवान शब्द दूसरा गुण, जिसमें संपूर्ण बल हो, संपूर्ण शक्ति हो, वही भगवान हो सकता है। किसमें है? कृष्ण के जितना बल इस संसार में किसी के पास नहीं। अब जो जन्म लेकर 6 दिन हुए हैं, पूरा संसार जानता है, 6 दिन की आयु में कृष्ण ने 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना नाम की राक्षसी का वध किया। आज का 160 साल का व्यक्ति भी नहीं मार सकता है। 6 दिन का बालक भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे, पूतना का वध कर दिया। और भी कई सारे असुर को, गासुर, बकासुर, तृणावर्त, शक्तासुर, सबको मारा। और कैसे? बिना शस्त्र के। कृष्ण के और बहुत सारे अवतार हुए, राम के रूप में आए तो धनुष बाण लेकर मारते थे, परंतु कृष्ण ने कभी शस्त्र हाथ में नहीं लिया। किसी को हाथ से घुमाकर, किसी का पांव पकड़कर, किसी को मुक्का मारकर सफाया। कृष्ण की शक्ति, कृष्ण का बल। और वास्तव में उनका बल तो यहां पर साबित होता है जब ब्रज वृंदावन में इंद्र ने सामवर्तक मेघ को बरसाया और ब्रज जब पानी में डूब रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस बहुत बड़े विशाल पर्वत पहाड़ गोवर्धन को अपने केवल कानी उंगली पर धारण कर लिया। 1-2 सेकंड के लिए नहीं, कहते हैं 7 दिन 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक उंगली पर, अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। सारा जगत इस बात को जानता है। आज भी वह गोवर्धन ब्रज वृंदावन में उपस्थित है, प्रमाणित है। बताइए इससे ज्यादा शक्ति किस में हो सकती है? कृष्ण ही सबसे शक्तिशाली है, शक्तिमान है। आजकल अपने आप को भगवान मानने वाले कहते हैं हम भगवान हैं। गोवर्धन की बात छोड़ दीजिए, 2-3 क्विंटल की बोरी रख दीजिए उसके सिर पर और कहिए 7 दिन खड़े रहिए, 7 घंटे में थक जाएंगे और कहते हैं भगवान है। कृष्ण सर्वशक्तिशाली, और केवल अपने इशारे से संसार के संसार का, करोड़ों कोटि ब्रह्मांड का प्रलय करते हैं। भगवान कृष्ण की यह शक्ति। तो यह है दूसरा गुण। तीसरा गुण, संपूर्ण धन। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में धन हो उसे भगवान कह सकते हैं। संपूर्ण मात्रा में धन कृष्ण के पास, यहां तक कृष्ण से ही सब धन आ रहा है। संसार में ये कुबेर इत्यादि देवी देवता जो भी धन की कृपा दूसरों पर करते हैं, ये लक्ष्मी जी से लेकर देते हैं, परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानम, ऐसी करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी कृष्ण की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती है कि हम कब कृष्ण की सेवा करेंगे। जो लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी के नाथ हैं, जिसकी सेवा करने के लिए लक्ष्मी लाइन में खड़ी रहती हैं। और आज संसार के लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, धन प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, परंतु फिर भी हाथ में नहीं आता है। बात आई है इसलिए मैं आपको कह दूं, संसार के लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी का फोटो रखते हैं, उसकी आरती करते हैं और कहते हैं लक्ष्मी की इतनी सेवा करते हैं, परंतु आती नहीं है, कैसे आएगी। आज की लड़की की तरह थोड़ी ना है, किसी के भी घर पे चली जाएगी। लक्ष्मी जो है पतिव्रता नारी है, अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाती है, अपने पति के पीछे पीछे चलती है। जो लक्ष्मी के पति की सेवा करता है, लक्ष्मी का पति यदि आपके घर पे आ गया तो लक्ष्मी अवश्य आएगी। और एक नहीं, एक नहीं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, एक साथ सैकड़ों लक्ष्मी आएगी। धन हाथ में रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। कहते हैं द्व हाथन वारो सके, भगवान जब इस संसार में किसी जीव को देते हैं तो हजारों भुजा से देते हैं, हजारों हाथ से भगवान देते हैं, दो हाथ वाला रख भी नहीं सकता, अब कहां रखे। पर इसके लिए लक्ष्मी के पति की सेवा करनी होगी, उसका आवाहन करना होगा। लक्ष्मी के पति हैं द्वारका, जिस महल में रहते हैं वो महल ही सोने का बना हुआ है। हमारा महल तो छोटा ईंट से, कंक्रीट सीमेंट से बना है और हम अपने आप को बहुत बड़े मालिक मानते हैं, वो भी भाड़े का है, अभी ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। परंतु इनका महल चिंतामणि पारस मणि से सोने का बना हुआ महल। दशम स्कंद में द्वारका लीला में बहुत सुंदर बात आई है कि भगवान का महल चिंतामणि और पारस मणि से बना हुआ और उनका ऐश्वर्य कहते हैं 16108 पत्नी, यहां तो एक पत्नी भारी पड़ जाती है, 16108 पत्नी, परंतु सभी प्रसन्न। ऐसा नहीं कि एक दुखी, क्या आप मुझे समय ही नहीं देते हो, कुछ लाकर नहीं देते हो। भगवान सबको संतुष्ट रखते थे और किसी को भगवान कृष्ण से मांगने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि महल ही चिंतामणि और पारसमणि से बने थे। चिंतामणि का अर्थ होता है चिंतन मात्र से जो उपस्थित हो जाए। किसी को बनारसी साड़ी चाहिए तो केवल चिंतन करना, चिंतन भर करना होता था, साड़ी उपस्थित हो जाती थी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धन और ऐश्वर्य अद्भुत था। किसके पास है इतना ऐश्वर्य, किसके पास इतना धन है? तो ये है धन के पति भगवान कृष्ण, जिसके पास संपूर्ण धन। इसी के साथ साथ भगवान उसे कहते हैं जिसके पास संपूर्ण यश हो। यश माने फेम, प्रचलित हो जाना, फेमस हो जाना। अब देखिए कृष्ण से ज्यादा फेमस कौन है? इस फेमस किसे कहते हैं जो तीनों काल में फेमस रहे। इस संसार में फेमस होते हैं कुछ लोग, परंतु कितने साल तक? 10 साल पहले जो क्रिकेटर था वो बहुत फेमस था, लेकिन आज बूढ़ा हो गया, उसका कोई फेम, कोई यश नहीं है। परंतु भगवान का यश भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और युग युग तक उनका यश फैलता रहेगा। और मित्रों, यश तो उनका बढ़ता है जो अच्छा कार्य करता है। अच्छे कार्य करने वाला का यश बढ़े ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कृष्ण ऐसे हैं, बुरा से भी बुरा कार्य करते हैं फिर भी उनका यश फैलता है। अब देखिए चोरी करना कितना बुरा काम है। संसार का भी कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो जेल में बंद कर देंगे, लेकिन ये चोरी करते हैं तो माताएं प्रभु जी गाते हैं माखन चोर की लीला इत्यादि, इसे यश कहा जाता है। रण छोड़कर भागने वाले को कायर कहते हैं, परंतु कृष्ण रण छोड़कर भागते हैं तो रणछोड़ राय करके द्वारका में उसकी पूजा होती है, इसे यश कहा जाता है। बुरे से बुरा काम करे फिर भी यश हो जाता है, अच्छा काम करे तो यश हो जाए। तो भगवान का संपूर्ण यश, तीनों लोक में भगवान का यश है, सब लोग उसे जानते हैं, ये है यश। कितना हुआ? 5 हो गया, 4 हुआ, कौन सा बाकी रहा है? अच्छा, ज्ञान। तो सब लोग जानते हैं मैं खामखा बोल रहा हूं। ज्ञान भगवान उसे कहते हैं जिसमें संपूर्ण मात्रा में ज्ञान हो। कृष्ण में संपूर्ण ज्ञान है। कहते हैं सर्वस्य चाहम विधि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम। भगवान कहते हैं मेरे से ही सबको ज्ञान मिलता है। अपोहनम च, कृष्ण के पास ही समस्त ज्ञान है और कृष्ण के पास संपूर्ण वैराग्य। किसके पास ये कुछ हो सक थोड़ी बहुत मात्रा में हो, परंतु वैराग्य किसकी किसी के पास नहीं है, परंतु भगवान में संपूर्ण वैराग्य। अब देखिए आज से 11 लाख वर्ष पूर्व वही कृष्ण रामचंद्र बनकर इस संसार में आए, अयोध्या के राजा बनने वाले थे। अवधपुरी राजा दशरथ के चार पुत्र ज्येष्ठ भगवान श्री राम, और आदेश दे दिया राम को राजा बनाना है, परंतु कैकेयी निष्ठुर हृदय वाली उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने दशरथ से वचन मांग लिया। तापसवेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। तापसवेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। कैकेयी ने मांगा 14 साल के लिए राम को वन में भेज दो। राजा दशरथ ने राम को कहा नहीं बेटा वन में जाना है। भगवान राम ने केवल सुन लिया कि मेरी माँ ने मुझे 14 साल के लिए वन में भेजा है। पिताजी बिचारे धर्म संकट में फंसे हैं। एक और उनका वचन है रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई, और एक और पुत्र का प्रेम है। 3 घंटे के बाद अयोध्या के राजा बनने वाले थे, परंतु जैसे ही पता चला माँ की यह इच्छा है कि 14 साल के लिए जंगल में जाऊं, भगवान तुरंत तपस्वियों का वेश लाखों लाख की संपत्ति राज रजवाड़े ये सब कुछ त्याग कर नंगे पांव जंगल में जाने के लिए निकल पड़े। बताइए बताइए किसके पास इतना वैराग्य है। धन का कोई ठिकाना नहीं, प्रेम पत्नी और पुत्र प्रेम नहीं करते हैं, गाली देते हैं। ऐसे पत्नी पुत्र और घर को छोड़ने में 10 दिन भी जाना पड़े तो नानी मर जाती है। संसार में कुछ है नहीं, धन भी नहीं है, सच्चा प्रेम भी नहीं है, फिर भी आज के लोग उसे छोड़ नहीं सकते हैं, वास्तविक सच्चा प्रेम करने वाले। और अयोध्या जिसके सिर पर थी, जिसके चरणों में थी, झटके में छोड़ दिया भगवान ने, इसे वैराग्य कहते हैं। वहां गोकुल में हजारों गोपियां प्रेम करने वाली, जैसे ही अक्रूर जी आए एक झटके में छोड़कर मथुरा। नहीं तो एक व्यक्ति भी यदि प्रेम करने वाला हो तो व्यक्ति दूर नहीं जाता है, वैराग्य कहते हैं इसे। क्या है वैराग्य? भगवान में संपूर्ण वैराग्य, कृष्ण में संपूर्ण शक्ति है, कृष्ण में ही संपूर्ण धन है, कृष्ण के पास ही संपूर्ण ज्ञान है, कृष्ण के पास ही संपूर्ण यश है, कृष्ण के पास ही संपूर्ण वैराग्य है। इसीलिए कृष्ण ही भगवान है और बाकी कोई भगवान नहीं हो सकता है। ये बात सनातन सत्य है और ये कोई भावुकता की बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात है। बताइए इस वस्तु के अलावा किस में यह है, कृष्ण के अलावा संपूर्ण शक्ति किस में है? और इतना सुनने के बाद भी यदि हम समझ नहीं सकते हैं तो संसार में हमारे जितना दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। भारत भूमि में जन्म हुआ, इतनी पवित्र भूमि में जन्म, भागवत सुनने मिला, भक्तों का संग मिला, इतनी सुंदर व्याख्या हुई, फिर भी इस बात को जो स्वीकार नहीं करते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता है। उसके लिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर लीला, इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त करके भी जो विश्वास नहीं करता है वो तो पत्थर से भी कठोर है, हृदय हृदय नहीं है। कृष्ण ही भगवान है और एक ही भगवान है, एक एव ईश्वरस्तुर्य, एक ही भगवान है वो है कृष्ण। भगवान स्व आश्रय पर, हरेश्वर ने समझा कि वही भगवान कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण ही स्व आश्रय, कृष्ण ही स्वयं के आश्रय है और कृष्ण ही पर माने दूसरों के आश्रय है। कृष्ण ही तुर्य, तुर्य का अर्थ होता है कृष्ण ही सभी अवस्थाओं से, इस भौतिक जगत से परे हैं। भगवान हमारी तरह इस माया के बंधन में फंसे हुए नहीं है। कुछ लोग यह भी कहते हैं, कुछ धर्म वाले हैं, कहते हैं आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण को तो हम भी मानेंगे परंतु अभी नहीं मानेंगे। हम कहते क्यों? कहते हैं क्योंकि कृष्ण जो है अभी नरक में है और बाद में वो हमारे भगवान बनने वाले हैं, लेकिन अभी नरक में है। तो हम पूछते हैं अच्छा नरक में क्यों गए? तो कहते हैं उसने चोरी बहुत की ना, इसलिए। बड़े बड़े धर्म वेत्ता, धर्म का प्रवचन करने वाले प्रवचनों में कहते हैं कृष्ण ने चोरी की इसलिए नरक में गए। अरे मूर्ख लोग को इतना भी समझ में नहीं आता है। कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, आज यदि आप अपने घर पर दो रोटी रखते हो और यदि वह दो रोटी भगवान ने दो रोटी में से एक रोटी खा ली तो आप दुखी होगे कि सुखी होगे? सत्य बताइए। आज यदि आप भगवान के फोटो के सामने दो रोटी रखते हो, एक यदि चली गई भगवान ने खा ली, सुखी होगे कि दुखी होंगे? जहां पर भगवान साक्षात परब्रह्म परम ईश्वर विराजमान है और थोड़ा सा मक्खन किसी का खाते हैं, क्या वह दुखी हो जाएंगे और उस दुख के फलस्वरूप नरक में जाएंगे? इतना भी ज्ञान नहीं। और बड़े बड़े धर्मवेता तत्ववेता बनते हैं, सबके नियामक है वे, भौतिक जगत से परे। कहते हैं तुर्य, भौतिक बंधन में बंधे नहीं है जैसे हम लोग बंधे हुए। हम चोरी करेंगे तो जेल में डालेंगे, भगवान के ऊपर यह नियम नहीं है। नियम नियम के अंतर्गत जो रहते हैं उनके लिए होता है, भगवान के लिए नहीं होता है। भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, नियम भगवान बनाते हैं। और हम तो इस रजो सत्व तमो में बंधे हुए हैं। भागवत में बहुत सुंदर कथा आती है, इस संसार में हमारा कितना भी स्नेही हो प्रिय हो, यदि मर जाता है तो हम कभी उसे जीवित नहीं कर सकते हैं। चाहे करोड़ों अरबों रुपये भी क्यों न हो, सभी डॉक्टर को भी खरीद कर उसके सामने रख दो, फिर भी एक सेकंड भी कोई ज्यादा जिला नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग बंधे हुए हैं, बद्ध है, परंतु भगवान। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष तक गोकुल में रहे और बाद में मथुरा में गए और मथुरा से वे सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए। वहां पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अंतिम दिन में, क्योंकि भगवान एक शिष्य बनकर गए थे, आदर्श स्थापित करना था, गुरु जी को कहे गुरु जी मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? ये हमारे आर्य संस्कृति की विधि है कि जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता है तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु से कहते हैं आपको क्या चाहिए। परंतु आज बेचारा शिष्य गुरु के पास जाते हैं तो बाहरी बोर्ड लगाया होता है, 1 महीने का 5000 रुपया फीस है। आज के गुरु भी बिक गए हैं और वो शिक्षा शिक्षा नहीं है जो बेचते हैं धन से। भगवान ने कहा बोलो गुरु जी क्या चाहिए? तब सांदीपनी मुनि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस समय गुरु माता थी, उनको पूछा आपको क्या चाहिए? गुरु माता सांदीपनी मुनि ने दोनों ने मंत्रणा की और कृष्ण को गुरु माता ने रोते हुए कहा कि बेटा जीवन में हमारे पास सब कुछ है परंतु बहुत समय पहले हमारा एक बालक था, पुत्र था, और उस पुत्र की मृत्यु हो गई। यदि आपको देना है तो उस पुत्र को वापस ला कर दो। तो बहुत बड़ी दक्षिणा हो गई, मरे हुए पुत्र को वापस कौन ला सकता है? लेकिन कृष्ण को कहा कि यदि देना है तो मरे हुए पुत्र को वापस दो। भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी उसी समय प्रभात क्षेत्र गुजरात में समुद्र के पास गए और गर्जना करके समुद्र को कहे कि हमारे सांदीपनी मुनि गुरु के पुत्र को वापस लौटा दो। भगवान तो कहते हैं मद भयाति वाति वातोयम, भगवान के भय से सब लोग कांपते हैं। अरे भगवान की बात छोड़ दीजिए, भागवत के प्रथम स्कंद में सुद गोस्वामी कहते हैं आपन्न संस्कृतिम घोराम यह नाम विवशो घृणन। भगवान की बात तो दूर रही, भगवान का नाम और वो भी प्रेम से नहीं। विवश होकर भी यदि कोई भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान का नाम लेने वाले से यह भय भी कांप जाता है। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन नाम विवशो गृणन तत् सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्। भगवान के नाम से भय भी भयभीत होता है। साक्षात काल महाकाल प्रलय करने वाला काल भी भगवान से भयभीत होता है, डरता है। वरुण देव कांप गए, बाहर आए, प्रभु क्या चाहिए आपको? तो भगवान ने कहा कि हमारे गुरु जी का पुत्र यहां पर स्नान करने आया था और आपने उसे ले लिया, मर गया, वापस दो। वरुण देव ने कहा कि प्रभु मैंने आप उनके पुत्र को नहीं लिया। इस समुद्र में पांचजन्य नाम का एक असुर रहता है, उसने उस पुत्र को लिया है। तो भगवान उस समुद्र के भीतर गए और पंचजन नाम के असुर को ढूंढे, ढूंढकर तुरंत उसका वध कर दिए। परंतु उस पंचजन असुर के पास गुरु का पुत्र नहीं मिला। तब भगवान सोच में पड़ गए, अब गुरु का पुत्र कहां होगा? यदि मर गया होगा तो यमराज के पास होगा। तुरंत कृष्ण और बलदेव जी संयमनीपुरी यमराज के दरबार में गए। यमराज के दरबार में भगवान कृष्ण पहुंचे हैं। यमराज जी कांपते हुए आए, प्रभु आपको यहां आना पड़ा, मुझे कहा होता तो मैं द्वारका में आ जाता। भगवान ने कहा बहुत जल्दी में हूं, गुरु के पुत्र की मृत्यु हो गई है, क्या यहां पर आया है? यमराज जी ने कहा प्रभु वे यहां पर है, मेरे पास है, बताओ क्या क्या करना है। भागवत में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण ने कहा कि यद्यपि मेरे गुरु का पुत्र अपने कर्म के फलवश मर चुका है मैं जानता हूं, परंतु मेरे आदेश से भले उसके कर्म में मृत्यु लिखी है फिर भी उसे जीवित करके मेरे साथ भेजो। भगवान उस पुत्र का हाथ पकड़कर अपने साथ में लेकर गुरु जी के पास आए, सांदीपनी मुनि और गुरु मां को दे दिया, आपका पुत्र प्रदान कर दिया। इसे भगवान कहते हैं, मरे हुए को भी भगवान जीवित कर देते हैं, ये है भगवान। इस संसार में एक भी व्यक्ति मर गया है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे जीवित नहीं कर सकता, परंतु भगवान मरे हुए को भी जीवित करते हैं, क्योंकि तीनों गुण से परे हैं, वे सत्व रजस तमो गुणों में बंधे हुए नहीं है। और पर माने प्रकृति से परे है, प्रकृति में बंधे हुए नहीं है। वास्तव में यह प्रकृति भगवान की है। अब आइए मूल श्लोक पर आ जाते हैं, वैसे तो व्याख्या करने के लिए बहुत कुछ है, परंतु नारद जी का प्रश्न था कथम राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है। तो अब राष्ट्र का अर्थ हुआ यह ब्रह्मांड और पुरुष का अर्थ हुआ भगवान। और भगवान कौन है क्यों अभी भी नहीं पता चला? ठीक, अभी भी किसी को डाउट हो तो हाथ ऊपर करके खड़े होकर पूछ सकते हैं, शर्माते हैं तो बाद में भी मिल सकते हैं। तो एक ही पुरुष है और वो है भगवान, और वो भगवान कौन है? कृष्ण। अच्छा, तो प्रश्न ये होता है कि तो इस ब्रह्मांड में, इस जगत में कृष्ण ही पुरुष है और सब पुरुष नहीं है? हम तो अपने आप को पुरुष कहते हैं, स्त्री और पुरुष। तो सत्य तो यह है, वास्तव में यह राष्ट्र जो है यह ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में पुरुष एकमात्र कृष्ण है, और बाकी के जितने भी हैं ये सब प्रकृति स्त्री है। भगवान के अलावा ये सब भगवान की शक्ति है। हम जो जीव अपने आप को आत्मा जीव कहते हैं, ये जीव भी भगवान की शक्ति है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, ये कृष्ण की तटस्था शक्ति है। हम सब जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, ये संसार ये जगत कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। तो ये सब भगवान की शक्ति है, ये तो मानते हो? हम ये जीव भगवान की तटस्था शक्ति, ये जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति, ये मानते हो कि नहीं? चाहे पुरुष हो यह भी भगवान की शक्ति, स्त्री भी भगवान की शक्ति, ये तो सनातन सत्य है। तब मैं आपको एक ही प्रश्न पूछता हूं कि यदि हम सब भगवान की शक्ति है तो शक्ति मेल है या फीमेल है? शक्ति को आप मेल समझोगे या फीमेल समझोगे? शक्ति कैसा है कहा जाता है, शक्ति कैसी है? शक्ति फीमेल है। तो शक्ति जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाचक है। तो हम सब भगवान की प्रकृति है, भगवान की शक्ति है, और शक्ति जो है स्त्रीवाचक है। इसलिए भगवान की जितनी भी शक्ति, चाहे जीव हो, चाहे देवता हो, मनुष्य हो या संसार हो, ये सब स्त्री है, और भगवान एक ही पुरुष है, यहां पर साबित हुआ। हरियश्व समझ गए इस बात को? यहां तो एक घंटा समझाने के बाद कुछ लोग समझे, कुछ तो तब भी नहीं समझे होंगे, परंतु हरियश्व तो एक सेकंड में समझ गए। हाँ, कथम राष्ट्रम पुरुषम, राष्ट्र या ब्रह्मांड, पुरुष कृष्ण और बाकी सब शक्ति। ये प्रकृति, प्रकृति मेल है या फीमेल है? प्रकृति कैसा है कहा जाता है, प्रकृति कैसी है, ये भी फीमेल है। तो पुरुष जो है कृष्ण है, और ये सब फीमेल ये जो है उनकी शक्ति है। ये प्रकृति भी कृष्ण की है, भगवान की। तो इस प्रकार हरियश्व समझ गए, अरे बाप रे बाप, ये तो सब भगवान श्री कृष्ण का है, और कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब स्त्री है। तो तम दृष्ट्वा अभवम पुंसम, अरे बाप रे बाप, तो भगवान को इस प्रकार से जाने बिना हम जो कार्य करने में जा रहे हैं, वो कार्य करने से क्या फायदा? किम असत कर्म भीर भवेत। भगवान को समझे बिना अब समझ में आ गया है कि भगवान ही सब कुछ है, और हम भगवान की शक्ति है, तो इस भगवान को छोड़कर भगवान के लिए कार्य न करके दूसरों के लिए कर्म करना, ये तो असत कर्म है। असत कर्म यहां पर आया है, क्या असत कर्म वीर भवे। असत कर्म का अर्थ होता है, हरियश्व ने ऊपर समझा कि एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, और ये भगवान की शक्ति हम सब हैं। तो उस भगवान के लिए कार्य न करके हम लोग घर पे जाएंगे, विवाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कृष्ण को छोड़कर ये सब कुछ करने से क्या फायदा? ये तो सब असत कर्म है। किम असत कर्म भीर भवत, ये सब असत कर्म करने से क्या फायदा है? तो वास्तव में कृष्ण को छोड़कर हम जो भी कार्य करते हैं, ये सब असत कार्य है, और कृष्ण के लिए जो कार्य करते हैं उसे सत कार्य कहा जाता है। हरियश्व समझ गए, हमें अब असत कार्य नहीं करना है, सत कार्य करना है, और सत कार्य उसे कहते हैं जो कृष्ण के लिए हो। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से हरियश्व समझ गए, और जब तक मैं मानता हूं तब तक आप भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक राष्ट्र है यह ब्रह्मांड, और उसमें एक ही पुरुष भगवान श्री कृष्ण, एक ही भगवान, और बाकी सब। कुछ लोगों को प्रश्न होगा, तो ये सब देवी देवता दिखते ये कौन है? तो भगवान तो एक कृष्ण ही है, बाकी सब देवी देवता है। कभी कभी ये सब देवताओं को भी भगवान कहा जाता है, परंतु केवल उसे आदर देने के लिए। जैसे कोई भिक्षुक होता है, कभी भीख मांगने के लिए आता है तो कहते हैं माए बाप कुछ दे दो, तो क्या वो भीख जिससे ले रहा है वो माँ हो गया और बाप हो गए? कहता है कि नहीं? कभी कभी भिक्षुक कहता है कि हे माता जी, हे प्रभु, हे पिताजी, आप दे दो कुछ, तो क्या ये हमारा बच्चा हो गया? नहीं, वो आदर देने के लिए कह रहा है। तो वैसे ही शास्त्र में कभी कभी देवताओं को आदर देने के लिए भगवान शब्द कहते हैं, परंतु वास्तव में भगवान शब्द एकमात्र कृष्ण के लिए। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कृष्ण एकमात्र ईश्वर है और बाकी सब उनके सेवक हैं। हाँ भगवान है परंतु सेवक भगवान है, शिवजी भगवान परंतु सेवक, कृष्ण की सेवा करने वाले। कहने के लिए बहुत कुछ है। शिव जी को एक बार पार्वती जी ने पूछा कि टुडे आई एम वेरी कंफ्यूज। शिव जी ने कहा व्हाट, क्या हुआ? पार्वती ने कहा कि आज तक मैं समझ रही थी आप ही भगवान हो, ये आप माला लेकर बैठ गए, किसकी माला है? शिव जी ने कहा कि, पार्वती ने कहा कि बताओ आपसे भी कोई बड़ा है? मैं तो आज तक यही समझती ही हूं, समझती थी कि आप ही सबसे बड़े आराधनीय हो, क्या आपसे भी कोई बड़ा है? विष्णु पुराण में शिव जी कहते हैं देवी तो आज तक तुम अंधकार में रही। सुनो आराधना नाम अपि सर्वेशम, आराधना इस संसार में लोग आराधना तो बहुत लोगों की करते हैं परंतु आराधनाम अपि सर्वेशम, सभी आराधनाओं में हे पार्वती विष्णु आराधना परम, विष्णु की आराधना जो है, विष्णु की भक्ति है, ये सबसे बड़ी भक्ति है। तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, उनकी भक्ति करना, उनकी कथा करना, यही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। शिव जी यही करते हैं, कैलाश में बैठकर या तो भागवत कथा करते हैं या भगवान राम और कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में बैठकर यही करते हैं, नित्य भगवान को स्तुति करते रहते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। इस प्रकार इंद्र सूर्य चंद्र तारे ये सब लोग कृष्ण की स्तुति, ये सब लोग ईश्वर हैं परंतु छोटे मोटे ईश्वर, सेवक ईश्वर, परंतु कृष्ण जो है ईश्वरों के भी ईश्वर है। तो इस प्रकार हरेश्वर समझ गए कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है और कृष्ण को छोड़कर संसार के लिए कर्म करना ये तो असत कर्म होगा, इसलिए हम केवल कृष्ण के लिए कर्म करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो इस प्रकार एक ही पुरुष व कृष्ण है। अब तीसरा प्रश्न, ये बहुत उठपटांग प्रश्न है, सबसे हार्ड प्रश्न ये है कि एक ऐसा बिल है, एक ऐसा हॉल है जिसमें मनुष्य जा तो सकता है परंतु वापस खींचो तो भी नहीं निकल सकता है। तो इसका उत्तर हम कल आपको देंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? कुछ समझ में ना आया हो? हाँ पूछिए, माइक दीजिए। 5 मिनट सब लोग बैठिए, अब 1.5 घंटा बैठे हैं तो 5 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत आभारी हैं आपके, बहुत सुंदर तरीके से आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। कुछ वर्षों पहले एक बड़े बाल रखने वाला, पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति बहुत ही कम समय में आध्यात्मिकता की राजधानी एक्सप्रेस में बैठकर आज इस ऊंचाई पर श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, ये साबित करता है कि इस्कॉन कितना प्रैक्टिकल है। मैं बहुत आभारी हूँ श्री प्रभुपाद जी का भी जिन्होंने हमें इस्कॉन दिया है। प्रभु जी, मेरी दुविधा कल के प्रसंग में है। कल जैसे आपने बताया कि भगवान सृष्टि करना चाहते थे इसलिए उन्होंने दक्ष प्रजापति को सामर्थ्य दी कि वो 10,000 पुत्र पैदा कर सके। जब भगवान सृष्टि करना चाहते थे, ये उनकी इच्छा थी, तो उन्हीं के भक्त नारद मुनि अपने इन 10,000 पुत्रों को रोक रहे हैं सृष्टि और बढ़ाने के लिए, तो ये विरोधाभास क्यों? ये एक प्रश्न है। और कल किसी भक्त ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया था किंतु समय अभाव की वजह से उत्तर नहीं मिल पाया कि यदि हम भक्ति अपना कर भगवत धाम में पहुंच भी गए तो क्या गारंटी है कि हम फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में नहीं आएंगे? ठीक, ये 2 प्रश्न
है। बहुत सुंदर प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि भगवान की इच्छा से दक्ष प्रजापति को संतान प्राप्त हुई, तो भगवान के ही एक भक्त उस दक्ष प्रजापति के पुत्र को भक्ति में क्यों लगा रहे हैं, ये प्रश्न है। भगवान इस संसार के लोगों को उपदेश देना चाहते हैं, और जब तक भगवान इस संसार में प्रैक्टिकल रूप से न बताए तब तक संसार के लोग समझेंगे नहीं। तो भगवान की इच्छा ये थी कि एक जैसे यहाँ पर कल ड्रामा है, ड्रामा के द्वारा, नाट्य के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में तुरंत उस सिद्धांत को लागू कर सकता है। तो भगवान की इच्छा यह थी कि इस प्रकार से पुत्रों का जन्म हो और फिर नारद मुनि के द्वारा शिक्षा मिले और ये सारे पुत्र भक्त बन जाए, और भक्त बनकर भौतिक आसक्ति में जो बंधे हैं, भौतिक नियमों में जो बंधे हैं, उसे पूरा पूरा स्वतंत्र हो जाए। तो यह चीज को साबित करने के लिए, कथानक रूप में दिखाने के लिए, एक आचरण करके किस प्रकार से व्यक्ति भौतिक स्वतंत्रता से मुक्त हो सकता है, भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, यह दिखाने के लिए भगवान की यह इच्छा थी और यह कार्य कराया। और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या गारंटी है कि एक व्यक्ति भगवान के धाम में जाकर वापस नहीं आएगा, इसका उत्तर कल मिलेगा। कल का पूरा प्रवचन उसी में ही होगा, ठीक है। और कल के प्रवचन में यदि समझ में ना आए तो बाद में आप ये प्रश्न मुझे याद करा दीजिएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज आपने बताया कि भगवान वो है जो पूर्ण है, और भगवान से जो कुछ भी निकलता है वह भी पूर्ण है। भगवान पूर्ण है और उससे जो भी निकलता है वह भी पूर्ण है, किंतु हम भी तो भगवान से निकले हुए हैं, तो फिर हम पूर्ण क्यों नहीं है? बहुत सुंदर प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है, और इसके समझने के लिए भी टेक्निकल माइंड चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति से समझ सकता है। भगवान पूर्ण है, भगवान से जो निकलता है वह भी पूर्ण है, और फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं, इसे पूर्ण कहा जाता है। तो भगवान से यह सृष्टि भी निकली, भगवान से यह जीव भी निकले, ये तो यह जीव जो है अपूर्ण है। तो पूर्ण किसे कहा जाता है इसे पहले समझिए। पूर्ण की व्याख्या क्या है? पूर्ण की व्याख्या वो है जिसमें सब कुछ हो। जिस वस्तु में सब कुछ हो उसे ही पूर्ण कहा जाता है, अर्थात जिसमें अच्छा हो और बुरा हो, जिसमें पूर्ण हो अपूर्ण हो, उसे ही पूर्ण कहते हैं। केवल अच्छी अच्छी वस्तु हो तो उसे पूर्ण नहीं कहते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे थाली, एक थाली भोजन की थाली होती है, उसमें रोटी हो सब्जी हो परंतु स्वीट ना हो तो वो पूर्ण थाली नहीं है। रोटी सब्जी और स्वीट परंतु साथ में साथ मिर्ची और अचार ना हो तो भी, सब कुछ निकालकर केवल मिर्ची है तो भी वो पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण उसे कहते हैं जिसमें सब कुछ होना चाहिए, अर्थात अपूर्णता जो है वह भी पूर्णता का एक गुण है। समझ रहे इस बात को? एक एग्जाम्पल से आप समझ ही जाओगे। मान लीजिए आप एक नया फ्लैट खरीदने के लिए जाते हो, यदि आपके पास पैसा आ गया 25-30 लाख रुपया आपके पास आ गया, तो आपको नया फ्लैट खरीदना है, क्योंकि चाली में रहने से थक गए हैं, नहाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, नया फ्लैट ढूंढ रहे हैं। तो फ्लैट ढूंढेंगे तो उसमें आप देखेंगे, खरीदने से पहले देखेंगे इसमें किचन होना चाहिए, हॉल होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, फिर देखेंगे टॉयलेट बाथरूम भी होना चाहिए। यदि उसे उसमें टॉयलेट बाथरूम ना हो तो वह घर पूर्ण माना जाएगा? यदि उसमें टॉयलेट बाथरूम ना हो, अटैच ना हो, तो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि टॉयलेट बाथरूम है इसलिए हमने वह घर खरीदा है तो केवल टॉयलेट बाथरूम में ही सोते रहे। पूर्ण घर का एक गुण है जिसमें टॉयलेट हो, बाथरूम हो, किचन हो। तो ये अपूर्णता जो है वह भी पूर्णता का एक गुण है। तो भगवान पूर्ण तब है जब उसमें कुछ अपूर्ण भी है, कुछ पूर्ण भी है, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, तब एक पूर्ण वस्तु बनती। तो इस प्रकार भगवान में जो अपूर्णता है, तो यह प्रकृति और यह जीव अपूर्ण है, परंतु यह अपूर्ण पूर्णता का गुण है। इस प्रकार से इस बात को समझना होगा। जिसने प्रश्न पूछा उसे समझ में आ गया? इससे अच्छी तरह से हम नहीं समझा सकते। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। हरे कृष्ण। हाँ, ये बहुत एक अच्छा विशेष प्रश्न है। हमने कहा कि तीन स्वरूप, एक ब्रह्म के रूप में सभी जगह में, परमात्मा के रूप में हृदय में, और साकार रूप में भगवान अपने धाम में। भगवान श्री कृष्ण जो है ये भगवान का साकार स्वरूप है, और यही कृष्ण जब अवतार लेकर आते हैं इस धरा धाम पर तो अवतार भी साकार होते हैं, और कभी कभी कृष्ण स्वयं इस धरा धाम में आते हैं तो वह भी साकार होते हैं। तो ये साकार जो होते हैं कभी अवतरित होते हैं। ऊपर अवतरित होना माने ऊपर से नीचे उतरना। तो ये भगवान का साकार स्वरूप कभी कभी ऊपर से नीचे उतरता है। क्यों पता है? संसार के लोगों को विश्वास दिलाने के मैं केवल निराकार नहीं, मैं साकार भी हूं। आप लोग जानिए, इसे समझिए, मैं लीला भी करता हूं, मैं रसों का आदान प्रदान भी करता हूं। ये है। तो भगवान साकार रूप से ऊपर भी हैं, अवतार लेकर नीचे भी आते हैं। ये दोनों साकार है। ठीक है, और कोई प्रश्न है?